ನಿತಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ್ ನಿತಾಯಿ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಬೃಂದಾವನ್ ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜೀ ಕೀ ನಿತಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರೀ ವೃಷಭಾನುಸುತೈ ದೇವೀ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ ಉನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೈ. ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಹೋನೆ ಸೇ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಅಪ್ನೆ ಸಾಥ್ ಅಕೇಲೆ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ ಕರ್ನಾ ಯೇ ಬಹುತ್ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಹೈ. ಏಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಐಸೆ ಆಯೇಗಿ ಜೊ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಸ್ವಪ್ನ ಹೈ ಕಿ ಹಮ ಅಕೇಲೆ ಬೈಠ್ ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ರಹೇಂಗೆ. ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೈ ತಾಕಿ ಕಥಾ ಕಾ ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಹೋ. ಕಥಯಂ ತು ಮಾಂ ತುಭ್ಯಂ ಕ್ಯಾ ಬೋಧಯಂತ ಸಬ್ ಪರಸ್ಪರಂ ಉಸ್ಕೆಲಿ ಪರಸ್ ಕಥಯಂತ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಬೋಧಯಂತ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ತೋ ಪರಸ್ಪರ್ ಯಾನಿ ದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋನಾ ಜರುರಿ ದೋ ಸೇ ಅಧಿಕ ಹೋನಾ ಜರುರಿ ತೋ ಹಮ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಅಭಿ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಅಭಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಲಗಾತಾರ್ ಚಾರ್ ಬಾರ್ ಮಿಲೇಂಗೆ. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये विषय बहुत रहस्यमय है. कुछ चीज़ें ओपन होती हैं फिर भी गुप्त होती हैं. सबको दिखती है लेकिन फिर भी दिखती नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो बहुत ऊपर ऊपर का होता है और जो वास्तव में देखना चाहिए वो नहीं दिखता है, इसलिए वो रहस्य है. और ये एक स्तर है भौतिक स्थिति, जैसे हम अभी विश्व में जी रहे हैं. कुछ लोग भारतवर्ष में जी रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका में जी रहे हैं, तो सब जगह कैसे भौतिकता है. एवरीवेयर देयर इज मटेरियल कॉन्शियसनेस. अभी मैं आते वक्त चर्चा कर रहा था कि विदेश में केवल भौतिकता है और भौतिकता कैसे और अधिक विस्तारित करनी है और अधिक हमारा भौतिकता में आनंद कैसे मिलेगा उसके विषय में संशोधन है पूरा. जैसे शरीर का भोग और अच्छी तरह से कैसे विस्तार किया जाए उसका, उसके बारे में बहुत रिसर्च है, सेमिनार्स है, गाइडेंस है, ये करो, ये एंजॉय करो, ये करना चाहिए, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, ये बहुत नॉर्मल है, इसको ऐसे विस्तारित करो, इसके ऐसे विस्तारित करो. जैसे शादी में कैसे होता है ना, बहुत जलेबी का आयोजन होता है बहुत सारा, और शादी में कोई बंधन लेता नहीं है कि खाओ जितना चाहे उतना खाओ। तो कुछ लोग आके आपको मिलेंगे, आपको जलेबी खानी है बहुत सारी, तो हर दो जलेबी के बाद में आधा ग्लास छाछ पियो, फिर आपको जलेबी खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और वो नमकीन और मिर्च वाला हो तो और बढ़ जाएगी। और ये हकीकत भी है, हमारे गांव में ऐसे होता है, एक ग्लास छाछ दो जलेबी, फिर ऐसे खाते रहते हैं। तो क्या गाइडेंस क्या है, जलेबी खाने की क्षमता कैसे बढ़ाएं, ये तो मैंने बहुत साधारण वस्तु बताई आपको। शरीर का सबसे जो ग्रॉस स्थूल आनंद है वो कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स करें। शराब भी पिए तो कितनी ज़्यादा पीकर भी कैसे कंट्रोल में रहे, इसका भी ट्रेनिंग होता है। क्या बताऊँ आपको, इतना घटिया आजकल का लाइफ है ना, कि आगे का यहाँ इस व्यासपीठ पर बैठकर चर्चा भी नहीं कर सकते कि लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, और क्या उनके अंदर विकृतियाँ निर्माण होती है, कि साधारण मार्ग से अनुभव नहीं मिलता है अच्छा, तो फिर विकृति से करते हैं प्रयत्न, फिर और विकृति में विकृति, विकृति के अंदर और विकृति की विकृति, ऐसे करते 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 इतने निचले कीचड़ में चले जाते हैं। कचरे का डिब्बा होता है ना, उसके अंदर ऊपर सूखा सूखा कचरा होता है, जैसे आप निकालते जाएंगे ना तो अंदर गीला और सड़ा हुआ कचरा मिलेगा। तो वो जो नीचे का, सबसे नीचे का सड़ा हुआ, कीड़े पड़ा हुआ, गीला पेट्रीफाइड कचरा है, वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमको उनके प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, हमको उनके प्रति कोई शत्रुत्व नहीं है, हमको केवल इतना ही देखना है कि हमारे देश के भाग्यवान जीव उस कीचड़ में ना फंसे। उनको जो करना है उनकी मर्जी है, उनका स्वतंत्र है। तो उसके अगेंस्ट अपना भारत देश है, यहाँ तक कि अगर प्रवचन करना है तो प्रवचन की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये शास्त्र केवल भारत में मिलेगा। जैसे मैं एक बार बरसाना के बहुत महान संत जो हैं रमेश बाबा जी महाराज के पास बैठा था, और वो मुझे पूछ रहे थे राधानाथ महाराज जी कैसे हैं, और वो मैंने कहा थोड़े से बीमार रहते हैं, बहुत पुरानी बात है, उनको भी बहुत कथा करने से श्रम होता है बहुत। तो उन्होंने ना इतने बड़े उम्र, उनसे भी महाराज जी से भी कम से कम 15 साल बड़े हैं वो, तो झट से उन्होंने ना उल्टी छलांग लगा दी, हाथ पे खड़े हो गए उल्टे मेरे सामने ही, बोले उनको ये आसन करने को बोलो, ये वृक्षासन है, ये वृक्षासन करेंगे ना तो एक कथा करने के बाद ये आसन करेंगे, थोड़ा सा सांस लेंगे तो 3 घंटे और कथा कर सकते हैं, 3 घंटे और गा सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा जो है ना वो भारतवर्ष में हो सकती है, विदेशी में बोलेंगे कि एक पैग मार लो फिर और आपके कथा में आपके उत्साह आ जाएगा आपको। ये है सब, फर्क क्या है, वो बहुत भौतिक है, ये हमारा बहुत आध्यात्मिक है, वो बहुत स्थूल है, ग्रॉस है, हमारा बहुत सटल और सूक्ष्म है। फिर वो कुछ खाते रहते हैं, जैसे ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे से गले में कांस्टेंट गर्मी प्राप्त होती रहती, गला कभी ठंडा नहीं होगा, थकेगा भी नहीं, उसको उष्णता और एनर्जी प्राप्त होती रहेगी। इसलिए वो कभी भी देखें, हम गायक लोग हैं ना, वो गाते गाते आलाप करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, कुछ मुँह में रहता है उनके, उससे बात है, उसको सौंठ रहती है उसके अंदर, खड़ी शक्कर रहती है, इलायची रहती है, अदरक रहता है, उसका पूरा गोली बनाकर इधर रखते हैं और बीच में चबाते रहते हैं, उसका रस पीते रहते हैं, तो गले की क्षमता बढ़ती है। इतना सूक्ष्म शास्त्र जो है भारत में है, और यहीं पर वो आपको सुविधा है कि आप आत्मा के विषय में जान सकते हैं। वहां पर आप कैसे शरीर हो, और शरीर ही सब कुछ है, शरीरम खलु क्या बताऊं आपको, शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब जीवन का सार है, शरीर से आपको जो भी चाहिए वो प्राप्त हो सकता है, और प्राप्त करना और एंजॉय करना आपका धर्म है, ये सिखाया जाता है। और यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी क्या है, आप वो शरीर नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी, यहीं से हमारी आध्यात्मिक जीवन की यहाँ शुरुआत होती है। और फिर आप शरीर नहीं हो तो आप कौन हो, तो आप आत्मा हो, फिर आत्मा क्या है उसके बारे में जानकारी मिलती है, फिर आत्मा और भगवान का क्या रिश्ता है ये इसके बारे में जानकारी होती है, फिर भगवान का आत्मा का रिश्ता जो हमारा है संबंध है वो जागृत कैसे करना है, उसमें परिपूर्णता कैसे प्राप्त करनी है, ये शास्त्र यहाँ सिखाया जाता है। और उसके लिए फिर कोई योग करता है, कोई ध्यान करता है, कोई ज्ञान प्राप्त करता है, कोई कर्मकांड करता है, विविध स्तर है उसके, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, और फिर आखिर में भक्ति, और भक्ति कैसे सब योगों के परे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशां मद गति अंतरात्मना, ये ज्ञान मिलता है। फिर उसके बाद हमारे पास चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद है, वो संवाद किस चीज़ का सूचक है, भलो, बहुत अच्छा, आगे कहो आर, और आगे बताओ, और आगे बताओ, इसका अर्थ क्या है, जो सुना है वो बहुत श्रेष्ठ है उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके आगे भी है, ये एंड नहीं है। ऐसे करते 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 महाप्रभु चैतन्य रामानंद राय को ऐसे स्थिति पर लेके गए कि रामानंद राय भी खुद दंग रह गए, और वास्तविक दृष्टि से देखा जाए ना तो वो संवाद भी अंत नहीं हुआ है उसका, वो ऐसे सब स्थिति में पहुंच गए कि आगे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो अथाह सागर है, वो स्थिति में जाने के बाद में जो चर्चा है उसको अंत नहीं हो सकता है, यू कांट से ओके इट्स ओवर नाउ, उधर भी जाके पता चलता है कि जस्ट बिगनिंग नाउ। हम लोग जैसे समझो 110 माले की बिल्डिंग है तो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर की गैलरी में आते हैं, फिर सेकंड फ्लोर की गैलरी में आते हैं, तो क्या होता है आपको और अधिक अधिक विस्तारपूर्वक दृश्य नज़र आता है। जब आप 110 माले पे चले जाते हो तो आपको लगता है तो अब ये दृश्य की शुरुआत हो रही है, और ऊपर जाऊँगा तो और समुद्र भी दिखाई पड़ेगा, क्षितिज दिखाई पड़ेगा, क्षितिज का विस्तार होगा। उस तरह से आध्यात्मिक जीवन भी अमर्याद है, असीम है। तो ये जो विषय आज का या चार दिन का हम लोग कोशिश प्रयत्न करेंगे चर्चा करने का, वो भी उसी तरह से है, जितनी गहराई में जाओ उतना वो अधिक गहरा पता चलता है, जितनी गहराई में जाओ और अधिक गहरा ये पता चलता है, ऊपर से लगता नहीं कुछ। जैसे गांव में हमारे भरे हुए कुएं होते हैं बारिश के समय, तो वो पानी का जो ऊपर का स्तर है ना, जो ऊपर का लेवल है जहाँ पर तहाँ तक पानी है, उसको देख के पता चलता नहीं कि कितना गहरा पानी है ना। जब मटका होता है ना मेटल का जो छोड़ते हैं उधर, तो दोरी बताती है कितनी दोरी अंदर जा रही है, हाँ यू गो ऑन रिलीजिंग द रोप, तो पता चलता है कि अरे तो बहुत गहरा पानी है, पूरा दोरी समाप्त हो गई फिर भी अब तक तल को लगा नहीं, ऐसा लगता है। वैसा ही हमारा आध्यात्मिक जीवन है। तो ये हमारा परम भाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिया है। ये भारतवर्ष जो है इस भूमि को भगवान के जितने भी अवतार हो गए हैं उनका चरण स्पर्श हुआ है, और हो सकता है भगवान के बहुत सारे ऐश्वर्य संपन्न अवतार होंगे तो उनके तलुओं का स्पर्श नहीं हो गया रहेगा। जैसे द्वारकाधीश कृष्ण, जगन्नाथ भगवान, श्रीरंगम के भगवान, ये सब लोग ऐश्वर्य वाले भगवान हैं, कभी भी नंगे पैर चले नहीं, लेकिन फिर भी चले इस भूमि पर। लेकिन जितने अनंत संत हुए हैं उनके बारे में बताने के लिए जो प्रकट हुए हैं वो सब लोग नंगे पैर घूमे हैं, बहुत सारे लोग तपस्या तप में, और उनके चरणों का स्पर्श हुआ है, जिनके माध्यम से भगवान ने स्वयं को हमारे लिए प्रकट किया, उनको प्रकट करने की, भगवान को प्रकट करने की चाबी भगवान ने उनको दे दी कि आप मुझे प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने आकर भगवान का जो रहस्य है वो प्रकट किया, सारे भगवान का, जितने भगवान के अवतार हुए हैं, ऐसे हमारी पावन भूमि है। और इसमें अनंत पुण्य किए बिना पिछले जन्मों में भारतवर्ष में जन्म नहीं होता है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो क्या कहते हैं, अरे क्या है भारत में, क्या है, व्हाट इज देयर इन इंडिया, ये विचार जब आता है इसका मतलब परम अज्ञानी हो गए व्यक्ति, वो उनको पता ही नहीं है अपने बारे में भी। कस्तूरी मृग को उसके नाभि में क्या सुगंध है पता ही नहीं, पूरा विश्व भर में ढूंढते रहता है, जंगल भर में घूमता रहता है, सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध उसी के साथ यात्रा कर रही है, उसको पता नहीं सुगंध कहाँ से आ रही है। तो जैसे कस्तूरी मृग को उसके नाभि से सुगंध आ रही है, ये बताने के लिए कोई चाहिए कि सुगंध तुम्हारे नाभि से आ रही है, उसी तरह से हमारा जन्म कितना भाग्यशाली है उसको बताने के लिए कोई भक्त चाहिए, कोई संत चाहिए, कोई साक्षात्कारी भक्त चाहिए जो हमको बताएगा कि हम बहुत भाग्यशाली है, हमारा भाग्य विदेश में नहीं है, हमारा भाग्य इधर ही है। भारत, इसकी व्याख्या का अर्थ क्या व्याख्या हो सकती है हमको पता नहीं है, क्योंकि विदेशी लोगों ने हमारे पर राज करके हमको पूरा क्या कहे उसको, पूरा खच्चीकरण कर दिया। खच्चीकरण का मतलब होता है कल्चरल असैसिनेशन, सांस्कृतिक खच्चीकरण कहते हैं, योजनाबद्ध रीति से हमारे संस्कृति का हनन किया उन्होंने। खच्चीकरण का अर्थ जानते हैं आप, हाँ का ना बना देना, बस नॉन एग्जिस्टिंग कर देना, जो महत्वपूर्ण महान वस्तु है उसको एकदम तुच्छ बना देना, नष्ट कर देना उसको, उसको कहते हैं खच्चीकरण। वो योजनाबद्ध रीति से सांस्कृतिक हमारा खच्चीकरण कर दिया है, इसलिए हम सोचते हैं, हमारी सोच ही ऐसे बना दिया है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ का जो भी है सब बेकार है, जो विदेश में है वो श्रेष्ठ है। ये एक मनोधारणा, मानसिकता जो है उन्होंने बड़े ही विचारपूर्वक बुद्धिपूर्वक हमारे सभी लोगों के दिमाग में वो सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है। इसलिए सारे भारतीयों को बताना पड़ता है कि भारत में रहो, वो कहते नहीं विदेश जाना है, वहाँ का ग्रीन कार्ड प्राप्त करना है। ये सब राधाष्टमी के चर्चा में क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ट्वेल्थ का बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद, नीट का एक एक साल रगड़ने के बाद, जब तक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता है तब तक एनाटॉमी का अभ्यासक्रम शुरू नहीं होता है। दसवीं में या आठवीं में रहकर आप वो उसका विचार नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी मेहनत करने के बाद योग्यता प्राप्त होती है, फिर योग्यता के बाद में किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होता है, फिर मेडिकल किताबें आती हैं, फिर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्लास में बैठ सकते हो, फिर आपका आरंभ होता है, एंड नहीं हुआ है वो, शुरुआत हुई है उसकी। वैसे ही जब तक हमें हमारे भारतवर्ष के जन्म पर गर्व नहीं है, जब तक हमने ये बात स्वीकार नहीं की है कि हम शरीर नहीं है और हम आत्मा है, शरीर का भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है, शरीर का भोग त्याग करके आत्मा के ऊपर केंद्रित करना लक्ष्य हमारा, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, जब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं इसमें शुरुआत भी नहीं हो रही है। तो राधाष्टमी के विषय में चर्चा करने की जरूरत क्या है, राधाष्टमी का विषय कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, राधाष्टमी ये कोई कला मनोरंजन का साधन नहीं है, राधाष्टमी ये आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च विषय की चर्चा है। तो इसलिए सब लोगों की हमारी मनोभूमिका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मनोभूमिका नहीं बनती ना, जैसे आप देश में रहते हो और बार बार ये सोचते हो क्या हमारा बेकार देश है, इसमें क्या है, हमारा मन हमेशा उधर लगा है कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और यहाँ पर जी रहे हैं, तो यहाँ पर आप कभी भी परिपूर्ण जीवन जी नहीं सकते जब तक आपका दिल यहाँ पर नहीं है। जहाँ आपका मन है उसी का आप विषय का आनंद ले सकते हो। जिस वस्तु में, अगर बालक को मेडिकल में जाना ही नहीं है लेकिन पिता माता उसको बोल रहे हैं हम डॉक्टर हैं, हमारा दवाखाना है, हमारा हॉस्पिटल है, आपको डॉक्टर बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है, और ज़बरदस्ती वो पढ़ाई कर रहा है, उसको कभी भी आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा उसके अंदर। जब उसको स्वयं स्फूर्ति मिलेगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे माता पिता है ठीक है लेकिन मुझे स्वयं डॉक्टर बनना है, तो उसमें उसको पूरा रस आएगा और पूरा लाभ भी उसको प्राप्त होगा। वैसे हम जब तक हमारा जीवन का अधिष्ठान शरीर और शरीर के इंद्रिय भोग में बसा हुआ है तब तक ये यू आर नॉट दिस बॉडी कितना भी बोलेंगे उसमें कोई उसको रस नहीं आएगा। जब अंदर से अनुभूति होगी कि हाँ इस शरीर के इंद्रियों के विषयों के भोग में कोई आनंद नहीं है, केवल विफलता है, केवल फ्रस्ट्रेशन है, तब जाके उसके अंदर कुतूहल जगेगा कि यह आध्यात्मिक जीवन क्या है, फिर उसमें वो रमेगा, फिर उसमें प्रगति करेगा, फिर उसमें उसको थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगेगा। और ये जो थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगेगा ना, ये स्वाद की पराकाष्ठा है राधा रानी का तत्व। ये हमारे साइंस में एक होता है पीएचडी, आप जानते हैं ना, पीएचडी डॉक्टरेट, लेकिन उसके ऊपर भी एक होता है डॉक्टर ऑफ साइंस DSC, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं कि वो PhD का बाप होता है, इट्स अ बिग डिग्री डॉक्टर ऑफ साइंस। उसको PhD के बाद में 5-6 साल लगते हैं अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो। तो वैसे कुछ ये पराकाष्ठा का विषय है। तो आप ऐसे आएंगे बैठ जाएंगे, आपको लगता है कि हाँ बहुत पैसा कमाना चाहिए, बहुत प्रगति होनी चाहिए, बहुत प्रमोशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसमें आपको विश्वास है, और आप राधा रानी की कथा सुनने को आएंगे तो आपको एक तो कुछ समझेगा नहीं, और समझेगा तो भी थोड़ा मनोरंजन होगा, लाभ कुछ नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य क्या है कि अगर राधा रानी अगर अवतार ले ही चुकी है, जिनको जरूरत नहीं लेने की लेकिन वो ले चुकी है, कृष्ण ने भी अवतार ले लिया है ऑलरेडी, कृष्ण भी स्वयं आए हैं, राधा रानी भी स्वयं आए हैं, और कुछ परमोच्च आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं, कर रहे हैं, किया हुआ है, और वो हमको समझना है, तो उसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए, रुचि भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ साधना भी होनी चाहिए। बिना साधना के ये विषय तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। और मेरी आशा है कि आप सब लोग साधना करते होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि साधना किए बिना भगवान ने दिया हुआ ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। भगवान भी सोचते होंगे क्यों दिया उसको मैंने, दिया था लेकिन उसका उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। तो जो कोई व्यक्ति हमें कुछ उच्च वस्तु देता है ना, तो उसकी एक अपेक्षा होती है कि मैंने जो उच्च वस्तु सर्वोच्च वस्तु भेंट में दी है उसका उपयोग वो व्यक्ति अच्छी तरह से करे, उसका पूरा लाभ ले, है ना। जैसे कोई किसी ने आपको जो एक हाईटेक लैपटॉप दे दिया और आपने उसको कबर्ड में रखा और आप टैबलेट पे ही काम कर रहे हो, 6 महीने बाद में आता है वो, कैसे चल रहा है लैपटॉप का उपयोग, तो आप वो देखेगा कि पैक रखा है कबर्ड के अंदर, तो क्या लगता है उसको, मैंने इतनी उच्च वस्तु इसको भेंट में दी काम के लिए लेकिन वो तो उपयोग ही नहीं कर रहा है, तो कुछ फालतू चीज़ का उपयोग कर रहा है। तो वैसे ही जब राधा और कृष्ण आए और उन्होंने जो भी कुछ यहाँ प्रकट किया और वो हमें वो देने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों का दिल तो अभी तक तो इंद्रिय भोग के विषय में ही लगा हुआ है, यही चाहिए वो चाहिए, तो उनको ये हो सकता है कि अरे हम तो बेकार में आए और इनको दिया भी बेकार में। तो जो देते हैं ना सर्वोच्च वस्तु, उनको भी उस वस्तु का सर्वोच्च उपयोग करके हमें समाधान देना चाहिए कि आपने जो दिया वो आपने सार्थक किया उसका, और सार्थक करने के लिए हम सबको रुचि होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये विषय ऐसे भी लिखा गया है शास्त्र में कि ये विषय में अगर हम अयोग्यता में चर्चा करेंगे तो इंद्रियों के विषय में और आसक्ति बढ़ेगी। आपको समझ में आया कुछ? अगर साधना न करते हुए अगर दशम स्कंद की लीलाओं को आप श्रवण करेंगे, रास लीला का श्रवण करेंगे, तो आपके काम वासना वासना का वर्धन होगा, बढ़ेगी आपकी वासना, क्योंकि हम लोग राइट मूड में नहीं आए उसके अंदर। लेकिन जब सिद्ध भी नहीं हुए हम, परफेक्ट परफेक्ट भी नहीं हुए, लेकिन प्रामाणिकता से साधना करने का नियम से प्रयास कर रहे हैं, तो वही जो रास लीला है वो काम मर्दिनी लीला बन जाती है। काम मर्दिनी का मतलब क्या है? काम भावना का मर्दन होता है उसके अंदर, काम भावना का नाश होता है। तो सही रूप से, सही भावना से, सही साधना के अंतर्गत, सही मुख से अगर हम वो श्रवण करेंगे तो हमारी काम वासना का मर्दन होगा। वस्तु वही है, कोई खाएगा तो एसिडिटी होगी, कोई खाएगा तो एसिडिटी का समाप्त हो जाएगा। वो किस पर होता है डिपेंड? वस्तु खाने पर नहीं होता है, शरीर की स्थिति क्या है आपकी उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसको बहुत भूख लगी है वो खाएगा तो उसको एसिडिटी नहीं होगी, उसका पेट भरा हुआ है ऑलरेडी बीमार है वो खाएगा तो उसको एसिडिटी होगी, क्योंकि शरीर की अवस्था जो है वो भिन्न भिन्न है। वैसे आत्मा की अवस्था भिन्न भिन्न होती है, आध्यात्मिक स्थिति, आत्मा तो स्थिर है लेकिन आत्मा की जो आध्यात्मिक स्थिति है, स्पिरिचुअल स्टेटस है, वो अलग अलग होता है। और वो जब तक हम इस विषय के लिए अनुकूल नहीं करते हैं तब तक हमें इस विषय का पूरा लाभ नहीं होता है। और हमारी चेतना अगर विपरीत होगी तो यही बातें सुनकर हम क्या कर सकते हैं? पतित भी हो सकते हैं, हमारा पतन भी हो सकता है भौतिक विषयों में। इसलिए यहाँ तक कि जो परम भक्त हैं भगवान के, वो भी कहते हैं कि ये विषय की चर्चा करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। स्वयं कृष्ण भी राधा रानी का विषय पूर्णता समझ नहीं सकते, ये स्वयं कृष्ण दावा करते हैं कि मैं भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता कि ये क्या तत्व है। और रसिक भक्त भी ये कहते हैं कि हम भी नहीं समझ सकते, तो फिर कौन समझ सकता है। फिर उसका उत्तर भी वो देते हैं कि जो भगवान के विषय में रसिक हैं, भगवान के विषय में जिन्हें रुचि है, जो भगवान में रममान रहते हैं, जिन्होंने इंद्रिय भोग को त्याग कर दिया है, उनके चरणों का आश्रय जो ग्रहण करते हैं, उनके चरणारविंद में सेवा के रूप में जो आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हीं को ये विषय खुल जाता है। थोड़ा सा लोगों को आगे पीछे होने में ध्यान यामा हो गया रहेगा, मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ। आगे आइए सब लोग, आइए कम आइड। कोई भी योग्य भक्त जो है भगवान का, वो अपने आप को कभी भी राधा रानी के विषय में चर्चा करने के लिए योग्य नहीं समझता है। फिर भी हम चर्चा करते हैं कर्तव्य के रूप में, हमारे आत्मा के उद्धार के लिए। लेकिन इसमें रुचि तब उत्पन्न होती है जब रसिक भक्तों के चरणों में हम आश्रय ग्रहण करते हैं। और यही रसिक भक्त जो हैं, रसिक संत जन जो हैं, वो आचार्य के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे कि ललिता देवी स्वरूप दामोदर के रूप में आई, विशाखा देवी रामानंद राय के रूप में आई, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आई, बहुत सारी मंजरियाँ गोस्वामियों के रूप में आई, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो वो इस रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि जो रूप मंजरी के रूप में रहेंगे तो हम उनको अप्रोच नहीं कर सकते, नो चांस टू अप्रोच। और जब रूप गोस्वामी बनकर आते हैं तो संप्रदाय में संलग्न हो जाते हैं, उस संप्रदाय में हम दीक्षा लेते हैं। तो अभी भी हम रूप गोस्वामी से नहीं मिले हैं, लेकिन रूप गोस्वामी जो संप्रदाय में जुड़े हुए हैं उसमें हमारा भी कनेक्शन हो चुका है। तो वो कृपा जो है वो गुरु परंपरा से हमारे तक पहुंच रही है। लेकिन केवल जुड़ने से काम नहीं होता है, उसमें समर्पण होना चाहिए। उनके गुरु शिष्य परंपरा संप्रदाय की जो शिक्षा है उसको पालन करने में समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, हृदय से मन से उनको पालन करना चाहिए। भले हमारी सिद्धि नहीं हुई है, काम वासना नष्ट नहीं हुई है, क्रोध नष्ट नहीं हुआ है, मोह नष्ट नहीं हुआ है, विकार नष्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनके द्वारा दी गई शिक्षा और उनके द्वारा दिए गए नियम को पालन करने में हमारा समर्पण कम से कम होना चाहिए कि आई एम डेडिकेटेड टू फॉलो। बाद में क्या मेरे आत्मा का शुद्धिकरण होगा वो भगवान और गुरु जी के ऊपर है, लेकिन मैं मेरी तरफ से प्रामाणिकता से सिंसियरली इसको पालन करूँगा। और ऐसी मनोवृत्ति से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनकी कृपा होती है, तो उनकी कृपा से फिर इस विषय का दरवाज़ा खुल जाता है। इसका मतलब इस विषय में पारंगत नहीं होते, ये बोलते हैं ना एंट्री मिलेगी, थोड़ा सा अंदर क्या चल रहा है। वो लालबाग का गणपति पता है क्या हो रहा है? लालबाग का गणपति में लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही है, लाखों लोगों की, पुलिस लोगों को तो उनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया। एक फिल्म आई थी, वो सब लोग खाली स्टैम्पेड में गिर रहे हैं, बस बच्चे बूढ़े औरतें आदमी सब लोग एक के ऊपर गिर रहे हैं, पुलिस लोगों का बैरिकेड तोड़ रहे हैं। और लालबाग का गणपति तो दूर ही रह गए, दर्शन भी नहीं हो रहा है उसका। वैसी स्थिति हमारी हो सकती है, झांकी भी नहीं दिखेगी आपको क्या हो रहा है। समझो ये मंदिर 1,000-1,500 लोगों के द्वारा फिल हो गया तो नीचे लोग तो तरसते रहेंगे, अरे प्रभुपाद कैसे दिखते होंगे, कुछ श्रृंगार कैसे हो गया होगा गौरवताय का, उनको समझेगा नहीं कुछ। अगर आप टीवी लगा दें ठीक है, लेकिन नहीं लगाएं तो तड़पते रह जाएंगे, वो झांकी भी नहीं मिलेगी। तो ये जब कृपा संतों की होती है, रसिक भक्तों की, तो केवल झांकी दिखना आरंभ होता है, आगे बहुत कुछ है। और तो एनीवेज सारांश में कहा जाए तो हमें साधना में बहुत प्रामाणिक होना चाहिए, बहुत सिंसियर होना चाहिए, तब जाके ये राधाष्टमी आएगी तो कुछ कुछ समझ में आएगा कि क्या हमें भगवान संदेश देना चाहते हैं, व्हाट मैसेज ही इज ट्राइंग टू गिव अस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो एक स्थिति है साधना करने की, अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। श्रद्धा से जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें साधना प्रक्रिया जो है भजन क्रिया प्राप्त होती है। वो भजन क्रिया हम बहुत लंबे समय तक करते हैं तो धीरे धीरे करके एक एक अनर्थ जो है वो निवृत्त हो जाते हैं। सब अनर्थ एक साथ निवृत्त नहीं होते हैं और एक अनर्थ भी एक ही झटके में ख़त्म नहीं होता है। वो एक एक अनर्थ धीरे 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 उसका शमन होता है, उसको बहुत समय लगता है। और जैसे ही धीरे 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 अनर्थों की निवृत्ति होती है वैसे हमारी श्रद्धा का रूपांतर धीरे 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 निष्ठा में होता है। जितने जितने प्रकार के अनर्थ जितने स्तर पर नष्ट हो चुके हैं उतने प्रकार से निष्ठा धीरे धीरे बढ़ती है। और पूरे अनर्थ नष्ट होने के लिए बहुत समय लगता है लेकिन निष्ठा तब तक रुकती नहीं है, निष्ठा आ जाती है। भले पूरे निष्ठा अनुष्ठ अनर्थ जो है वो नष्ट नहीं हुए फिर भी अभी मैं ये छोड़ूंगा नहीं, जो चाहे हो जाए, मैं कुचल जाऊंगा लेकिन मैं ये फॉर्मूला है प्रभुपाद ने दिया हुआ वो छोड़ूंगा नहीं। अभी कितना भी आके कोई भी मुझे कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे फिर भी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये निष्ठा है जिस जो अचल श्रद्धा को निष्ठा कहते हैं। तो अचल श्रद्धा पूरे अनर्थ नष्ट नहीं भी हुए तो भी पैदा हो सकती है सत्संग के पावर के अनुसार। किसका सत्संग कर रहे हैं, इनको निष्ठावंत भक्त हैं उनके संग में रहेंगे तो आप निष्ठावंत नहीं हैं फिर भी आपके अंदर वो निष्ठा का प्रभाव वो संग तक चलता रहेगा। इसलिए हमको संग को बनाए रखना चाहिए ताकि हमारी निष्ठा किसी की निष्ठा के ऊपर अवलंबित है निर्भर है तो हम बने रहेंगे उसकी सहायता से, टेकू लगा के खड़े रहेंगे, हमारी निष्ठा भी बनी रहेगी। अभी तो उसके बाद में रुचि उत्पन्न होती है, बहुत दूर की बात है नहीं, बहुत दूर की बात है। लेकिन ये रुचि जो है इसको अगर शॉर्टकट में प्राप्त करना है अच्छा लगेगा ना आपको तो शॉर्टकट मिलेगा तो एक शॉर्टकट है उसका, प्रामाणिक शॉर्टकट है, शास्त्रोक्त शॉर्टकट है, वो ये है शुश्रुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। ये उसका बोनाफाइड शॉर्टकट है, इसमें कोई चोरी नहीं है। प्रामाणिक संत जो भगवान के चरणों में समर्पित हैं रत हैं सर्वस्व समर्पण कर दिया उन्होंने, ऐसे प्रामाणिक संतों की न्यून सेवा भी मिलेगी निम्न सेवा भी मिलेगी, उससे डायरेक्टली हमें रुचि उत्पन्न होती है भगवान नाम में भगवान कथा में। अगर भगवान ये कह रहे हैं तो भगवान देंगे आपको, भगवान ने शॉर्टकट बना के रखा है। जैसे वो होता ना सांप सीढ़ी, क्या नाम बोलते हो, स्नेक एंड लैडर, हाँ कुछ ऐसा डालेंगे उसमें छः आ गया तो एक जगह पहुँच गए 21 पे पहुँच गए सीधे 92 पहुँच जाते है ना। अगर 21 पर पहुँच गए कैसे भी गिनती करके 21 पे गए सीधे 92 में जाएंगे, वो क्या है शॉर्टकट है ना, वो लक है हमारा। लेकिन वो आयोजन बना के रखा है अगर 21 पे पहुँच जाएंगे तो 92 डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, बीच में का रास्ता आपका खाली हो गया, फ्लाई ओवर। उसी प्रकार से अनर्थों में अटके हुए हैं, साधना कमजोर है बहुत, हरिनाम में दिल नहीं लग रहा है, सुबह उठने को नहीं हो रहा है, उठने के बाद तो नींद आ रही है, उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है, रस ही नहीं आ रहा है जब करने में, 16 माला तो ऐसे मारून मुटकुन ऐसा पटक पटक के फिर भी 16 माला में बहुत कष्ट हो रहा है। ये स्थिति में अगर साधु सेवा मिल गई ना तो आपको अचानक जप में रस आने लगेगा अचानक। साधु सेवा बहुत ज़रूरी है। एक समय पर परम पूज्य राधानाथ महाराज जी अमेरिका इंग्लैंड में थे, सफ़र में अपनी यात्रा में थे, अचानक उन्हें वो जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें उनको ऐसा पता चला, आज से बहुत पहले 25 साल के पहले की बात है, उनकी पढ़ाई में उनको ऐसा एक रेफरेंस मिला चैतन्य चरितामृत में कि कलयुग के दो युग धर्म हैं। आज तक हमें लग रहा था कि एक युग धर्म है वो है हरिनाम, भगवान के नाम का संकीर्तन, ये कलयुग का युग धर्म है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। लेकिन उन्होंने कहा एक और भी युग धर्म है वो है वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों की सेवा ये भी युग धर्म है, टू सर्व द डिवोटीज इज ऑल्सो युग धर्म। और जो पहला युग धर्म है उसमें रुचि उत्पन्न करनी है तो दूसरा युग धर्म जो है वो सहायता करेगा आपको, और वो पहले युग धर्म से आसान है क्योंकि नाम रुचि उत्पन्न करना बहुत कठिन है लेकिन संतों की सेवा करना इतना कठिन नहीं है। समझा बोलेंगे इसका कपड़ा धो लो, धो सकते हैं आप, उसके बर्तन मांझ लो, धो सकते हैं, उनका बेड बेड ठीक करो, उनको झाड़ू लगाओ रूम में, कर सकते हैं। इतना सा करने से संतों के लिए जब करते हैं तो नाम रुचि उत्पन्न होती है, भगवत कथा रुचि उत्पन्न होती है। और फिर एक बार रुचि उत्पन्न हो गई फिर आपकी गाड़ी बहुत फास्ट चलती है। तो इसलिए कभी भी किसी भी संत की सेवा करने में चुकना नहीं। और आपको लगेगा कि अरे जब भी कोई सन्यासी आएंगे ना तो उनकी सेवा मिलनी चाहिए, ये सब भक्त लोग क्या है, नॉर्मल भक्त लोग, ये हमारी मनोधारणा है। बाय द वे हम लोगों को बताया जाए कि परम पूज्य राधानाथ महाराज की कपड़े धोने का मौका मिल रहा है तो 50 लोग टूट पड़ेंगे उसके पर। लेकिन कोई बीमार भक्त है, उसको टाइफाइड हो गया है, ब्रह्मचारी है, तो कपड़ा धोने के लिए कोई नहीं है, कोई बोलेगा कुछ हो सकते हैं क्या, तो सब लोग बोले मैं नहीं, मैं टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे मन में वो भी भेद है कि ये एडवांस डिवोटी है, ये ऑर्डिनरी डिवोटी है, ये ग्रस्त है, ये सन्यासी है, ऐसा है वैसा है, हम लोग वैसे भी भेद करते हैं और अपना सेवा का नियुक्ति उसके ऊपर करते हैं। लेकिन भक्तों की सेवा यानी जो हमारे से कनिष्ठ भी हो, हमारे से इक्वल भी हो, हमारे से वरिष्ठ भी हो, सन्यासी हो, गुरु हो, जो मिलेगा जिस भक्त की मिलेगा उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि हमें वो केवल कपड़ा धोने की या बर्तन मांजने की सेवा मिले, जो ज़रूरी है। जैसे हमारे हॉस्पिस वृंदावन में बहुत सारे विदेशी भक्त आते हैं एडमिट होने के लिए, लास्ट स्टेज में आते हैं, और कोई जर्मन होता है, कोई रशियन होता है, कोई इटालियन होता है, उनको इटालियन के अलावा कुछ भाषा ही नहीं आती है और यहाँ के लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग ढूंढते हैं मंदिर में कोई इटालियन भक्त है तो बोले कम से कम आपके आप 2 घंटा बैठो, ट्रांसलेट करो उसको, क्या दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, समझाने के लिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो दिन बंधु प्रभु की नंदगांव में यात्रा जा रही है फ्री ऑफ चार्ज, मैं उस पर जा रहा हूँ। क्योंकि तो उनको लगता है कि ये तो क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कौन है वो, आई डोंट नो हू इज द डिवोटीज। लेकिन वो महत्वपूर्ण सेवा है, वो मरणासन्न रूप स्थिति में है, 1 घंटा के अनुवाद से उसका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको आशीर्वाद देगा वो मरते मरते। तो उस समय आपकी नंदगांव की फ्री यात्रा को त्याग करना चाहिए आपको और भक्त के चरणों में बैठना चाहिए। क्या करूँ आपके लिए बताओ, व्हाट टू डू। क्योंकि नंदगांव में जाकर, बरसाने जाकर, गोवर्धन की परिक्रमा कर आपको जो नाम, भगवान नाम की रुचि नहीं उत्पन्न होगी, वो 1 घंटा में होगी उस भक्त की सेवा करके। क्योंकि वो भक्त कृष्ण का प्रामाणिक भक्त है और मरणासन्न अवस्था में है, बहुत विकट अवस्था में है। उस विकट अवस्था में आप उसकी सेवा करेंगे तो भगवान आपको 50 यात्रा के अंदर भी जो लाभ नहीं होगा वो 1 घंटे में देंगे आपको, क्योंकि आप उनके भक्त की सेवा कर रहे हैं। ये जब भाव होगा ना तब ये सब राधाष्टमी जन्माष्टमी हमारे रिलेवेंट है। तब तक सब शास्त्र है, किताब में रहेगा, वो किताब से दिमाग में जाएगा, दिमाग से हृदय में नहीं उतरेगा। ज्ञान का रूपांतर साक्षात्कार में नहीं होगा, पांडित्य में होगा, साक्षात्कार में नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है वैष्णवों की सेवा, उसके बाद अपने आप आपके पीछे पीछे नाम रुचि भाग के आएगी, आसक्ति भाग के आएगी, वासुदेव कथा रुचि आपके पीछे पीछे आएगी। आपको विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वो बड़े बड़े फॉर्मूला, इस टाइम पे ऐसी सांस लो, ऐसे बैठो, फिर माला जप करो, फिर दब्बी सांस लो, फिर करो, ऐसे बहुत सारे सेमिनार होते हैं। लेकिन उस सेमिनार के परे है वैष्णवों की सेवा। वैष्णवों की सेवा करते ही जहाँ बैठेंगे वहाँ नाम में रुचि लगेगी आपको, एक बार भी झपकी लगेगी नहीं, ये वादा है वैष्णव सेवा का परिणाम का, एक बार भी झपकी लगेगी नहीं, रुचि से 16 माला जप करेंगे और आगे का 17वीं माला भी करनी चाहिए, 18वीं माला भी करनी चाहिए, ये प्रमाण है उसका। ये सब किए बिना केवल राधा रानी की कथा सुननी है, कृष्ण की कथा सुननी है, ब्रज की कथा सुननी है, ये सब एक क्या कहते हैं ना, एक खोखला इच्छाएं हैं, एम्प्टी सब्सटेंसलेस डिज़ायर। वो अगर आपको लगता भी है और सुनेंगे भी, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा आपको उसका, और वो 2 मिनट याद भी रहेगी नहीं आपको कहानी, क्योंकि वो कहानी जो है वो उसके भाव के आधार पर अधिष्ठित हो जाती है हृदय में। आपकी चेतना अनुकूल है, आपका सेवा भाव उसके लिए अनुकूल है, तब जाकर वो कथा रूट पकड़ती है आपके हृदय में, हृदय के आंगन में। कोई भी बीज आप फेंकेंगे जमीन पर तो रूट्स कब पकड़ता है वो, जब वो भूमि जो है ना वो अनुकूल होगी उसके लिए, उपजाऊ होगी, सुपीक जमीन होगी, तो वो बीज उसको पहले रूट डालेगा और वो मूल पकड़ेगा फिर उसके बाद में ऊपर आएगा, नीचे पहले आता है ना, सबसे पहले मूल बना बनता है। मूल जब एक बार पकड़ लिया फिर ऊपर के पौधे जो होते हैं वो प्रकट होने लगते हैं, शाखाएं। उसी प्रकार से वैष्णव सेवा के भूमि में कृष्ण कथा राधा रानी की कथा जो है वो मूल पकड़ती है, फिर शाखाएं पत्ते फूल फल सब उत्पन्न होता है। और फूल और फल जो है वो राधा रानी और कृष्ण के लिए प्रेम है। तो ये सबका साइंस है, केवल तिलक लगा के कंठी माला पहन के हाथ में माला लेके धोती कुर्ता पहन के ये पता चलेगा ही ऐसे नहीं है, इसके लिए हृदय के सेवा भाव की आवश्यकता है। और वो ही सेवा भाव पूरे ब्रजभूमि का स्थाई भाव है, पूरे ब्रजभूमि का। दास्य रस का भी सेवा भाव स्थाई भाव है, साक्ष्य रस का भी बेसिस सेवा भाव है, माता पिता का जो प्रेम है वात्सल्य नंद यशोदा का वो भी सेवा में आधारित है, गोपियों का श्रृंगार रस माधुरी रस भी सेवा में बेस्ड है। सेवा के बिना कोई रस बनता ही नहीं है, बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ एनी रसा इज सेवा। सेवा नहीं है तो रस नाम की वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो कृपा करके इस सेवा को अपनाओ, इस सेवा की अभिलाषा करो। हाँ, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर और जितने भी आचार्य हैं उन्होंने अपने भजनों में यही लिखा है, सेवा अभिलाषा को रे, सेवा अभिलाषा। तो तुलसी आरती में भी क्या कहते हैं, एंड में क्या है, सेवा अभिलाषा को क्या है, करो निज दासी, है ना। वो कौन लिख रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इज दैट राइट। कितने बड़े मंजरी हैं वो स्वयं, और क्या लिखते हैं, सेवा दो मुझे, आपकी दासी बना दो। ये भाव जो है ना, इसको किंकरी भाव कहते हैं ब्रज की भाषा में। किंकरी भाव का मतलब है किम कर रहा, क्या करूं मैं, हाउ डू आई सर्व यू बेस्ट नाउ, इस वक्त में इस समय आपकी सर्वोच्च सेवा सर्वोच्च प्रकार से कैसे कर सकता हूं, किम कर रहा, उसको किंकरी कहते हैं। वो भी एक प्रकार की गोपी है, किंकरी सबसे वो दासत्व में रहती है, सबसे अधिक अधिकार उसको प्राप्त होता है उसकी दास्य भावना के अनुसार, पद के अनुसार नहीं, भावना के अनुसार। तो हम लोग तो किंकरी तो है नहीं, लेकिन किंकरी भाव को जरूर अपना सकते हैं। मंदिर में आकर कुछ कहा जाए तो तुरंत करने की भावना रखनी चाहिए, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो जाके पूछना चाहिए, किम कर रहा, कुछ सेवा है क्या बताऊँ। और वो सेवा करने में तत्पर रहने वाला व्यक्ति को ही शास्त्र का एक भी श्लोक याद नहीं रहेगा, कहाँ पर क्या लिखा है वो पता नहीं होगा, लेकिन सबसे अधिक साक्षात्कार उसी व्यक्ति को होगा। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानंद महाराज, उनके गुरु भाई परम पूज्य बरसाना स्वामी महाराज, इतना भयंकर काम करते थे ना, मतलब आज के दृष्टि से भी वो बहुत भयंकर काम था, ट्रैक्टर चलाना, घोड़ों को ट्रेन करना, बैलों को ट्रेन करना, पहाड़ की चोटियों को उखाड़ कर प्लान कर देना, 24/7 शिफ्ट में काम करना। और राधानाथ महाराज जी अकेले दिन रात डीटी वर्शिप कर रहे हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं, 6 बार भोग बना रहे हैं, 6 बार आरती बना रहे हैं, कोई बताने को भी नहीं आ रहे हैं, बढ़िया दर्शन किए आपने आज, नोबडी इज देयर, सिंपली सर्विंग सर्विंग एंड सर्विंग। उसके पहले वो गाय के सेवा में थे, तो कोई कहता था अरे भगवान कृष्ण की कोई कथा सुनाओ ना कोई, तो कहते थे वो तो ग्वाला है ना, वो गाय का दूध निकाल रहे हैं, उसको आप बैठ जाओ। तो गाय का दूध निकाल रहे हैं और अनंत कृष्ण कथा कर रहे हैं। कभी बरसाना महाराज कथा करते थे तो बैठते थे, बोले ये भी ग्वाले के पास जाओ, तो वहाँ जाएंगे तो पूरी गौर लीला सुनाएंगे आप दूध निकालते निकालते। तो कैसे सभी साक्षात्कार होता है, सेवा भाव से होता है, सेवा तत्पर होने से होता है, सेवा तत्परता से वो साक्षात्कार प्राप्त होता है, वो जिजीविषा यानी लौल्य निर्माण होता है, फिर उसको समझ में आता है। अब ये पानी रखा है यहाँ पर आके, ग्लास नहीं हुआ तो वो पीने में मुश्किल होगी ना, उसको गरम गरम खीर होगी और हाथ में कैसे देंगे, उसको पात्र चाहिए ना उसके लिए। तो पात्र जो है वो सेवा भाव सेवा तत्परता है, पात्र जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा खीर आएगी आपके पात्र में। उसी सेवा भाव सेवा तत्परता को आपको बढ़ाना चाहिए, तब ये राधाष्टमी, जन्माष्टमी, नरसिंह जयंती, हाँ ये रामनवमी, ये सब आपके जीवन में नए नए अर्थ उत्पन्न करेगी, नए नए दालन दरवाजे खोल देगी आपके लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार के। हम सब लोगों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारतवर्ष में जन्मे हुए जीव हैं। उसके बाद में हमें गर्व होना चाहिए कि भारतवर्ष में सनातन धर्म के परिवार में हमारा जन्म हुआ है। कितने लोगों को गर्व है? होना चाहिए, सबको होना चाहिए, कर्रा गर्व होना चाहिए। किसी चीज की कमी लगनी नहीं चाहिए, अरे हमारे धर्म में यह कमी है, नहीं, हमारा धर्म सर्व समृद्धि से पूर्ण है, सर्व समृद्धि संपन्न है। और हमारे लिए सारे संतों का चरित्र उपलब्ध है, सारा शास्त्र उपलब्ध है, भगवान नाम उपलब्ध है, श्रीमद् भागवत उपलब्ध है। प्रामाणिक भक्त जो सिंसियर है, कपटी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, ऐसे निस्वार्थ भक्त जो है वो हमारे सामने उपलब्ध है। मैं आई कैन गारंटी यू, हमारे इस्कॉन में जो भी भक्त आता है वो सिंसियर होता है। ही इज़ नॉट अ चालू भक्त, वो धन कमाने के लिए, कुछ पद प्राप्त करने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए नहीं आता है। अधिकतर भक्त हमारे प्रामाणिक होते हैं, सब कुछ छोड़ के सिंसियरली भगवान की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे भक्तों का संग भी हमें उपलब्ध है, सबसे उच्च सिद्धांत हमारे लिए उपलब्ध है, द बेस्ट ऑफ बेस्ट फिलोसॉफी, सारे तत्वों का शास्त्र उपलब्ध है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ लिखा है, चैतन्य चरित्र में सारे रसों का वर्णन है, सारे लीलाओं का वर्णन है, भागवत का पूरा निरूपण किया हुआ है, भगवद गीता का पूरा बेस्ट ऑफ बेस्ट भक्ति भाव से निरूपण किया हुआ उपलब्ध है। तीर्थ धाम का हमको परिचय हो चुका है, विग्रहों का परिचय हो चुका है, हमें विग्रहों की सेवा उपलब्ध है। विग्रह क्या है इसके बारे में जानकारी है, अलग अलग प्रकार के भक्तों के साथ में विग्रहों की सेवा करते हैं, आरती पूजा करने का मौका हमारे लिए उपलब्ध है, तुलसी का परिचय है, तुलसी पूजा का हमारे लिए उपलब्धि है। क्या क्या बताएं, नाम हो गया, सत्संग हो गया, भागवत हो गया, विग्रह हो गए, धाम हो गया, तुलसी हो गई, सब कुछ उपलब्ध है हमारे लिए। ऐसा हमारा भाग्यवान जन्म है और हमारा भाग्यवान अप्रोच है, हमको सब सुविधा उपलब्ध है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो रोलेक्स वॉच नहीं है, हमारे पास जस्ट इन टाइम वॉच नहीं है, ये सब कुछ नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ जो हमें प्राप्त है उसका पूरा लाभ हमने ले लिया तो हमारा यही जीवन, हमारा सब परिवार धन्य हो जाएगा। हम ही नहीं धन्य होंगे, हमारे पास जो भी आएगा वो सब लोग धन्य हो जाएंगे, इतना हमारा भाग्यशाली जीवन है। संतों के साथ हम यात्रा जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर प्योर कृष्ण कथा, निरपेक्ष निस्वार्थ सर्वोच्च कोटि की कृष्ण कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त है। बताइए है कि नहीं है? सबको उपलब्ध है। हमारे जैसा कथा में बैठ 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 कर गुरु जी 6 घंटा कथा कर रहे हैं, ऐसा अवसर सबको प्राप्त नहीं होता है। हमारे मंदिर में हमने एक ज़माने में, अभी तो महाराज थोड़े से वयोवृद्ध हो गए हैं, लेकिन हर गौर पूर्णिमा में 6-6 दिन 6-6 घंटा रोज कथा करते थे। जन्माष्टमी में भी ऐसे ही होता था, 6 दिन 7-7 घंटे। जन्माष्टमी के दिन तो सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मंदिर में सेवा करने का, आगे तैयारी करने से कथा समाप्त तो करनी पड़ती थी, ऐसे कथा होती थी। बृहद भागवतामृत 5 दिन लगातार 5-5 घंटे कथा चल रही है, तो ये भी भाग्य है। तो आधा घंटे में हम यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, क्या हो रहा है भाई, इतने इतना क्यों बोल रहे हैं, प्रसाद का इंतजाम कुछ है कि नहीं, चुड़बुल तला मंडत मराठी चुड़बुल, सब सभागृह में चुड़बुल हो जाती है। लेकिन हमें वो अवसर मिला है, प्राप्त है कि घंटों घंटों एक जगह बैठकर कथा सुनने की क्षमता जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है और तैयार करनी भी चाहिए, क्योंकि एकाग्रता से न थकते हुए श्रवण करना भी एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। जिसको ऐसा श्रवण करने में रुचि है वो बहुत जल्दी आध्यात्मिक प्रगति करेगा, तो उसको सेवा में भी रुचि आएगी उसके बाद। तो ये हमारा भाग्य पर हमें निरंतर विचार चर्चा करनी चाहिए। जब भाग्य पता चलता है, भाग्य पर गर्व करते हैं, भाग्य पर चिंतन करते हैं, तो भाग्य का और उदय होता है, भाग्य की प्रगति होती है। और हमारा तो भाग्य ही भाग्य, मैं आपको हृदय से कह रहा हूँ, हमारा तो भाग्य ही भाग्य है, हमको कोई रोने की जरूरत ही नहीं है, कोई कष्ट भी हुआ, कोई कर्मों की वजह से कोई तकलीफ भी हुई, डोंट वरी, हमारा इतना भाग्य है कि हमारे सारे दुखों को मिटा देगा वो, अगर उसका लाभ लेंगे तो। यस, क्या करते हैं? ओके, तो आप कुछ मत करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइट करो, तो संत लोग होते ना, वो सदैव इसका चिंतन करते रहते हैं कि कैसे इन विश्व के बद्ध जीवों को, कैसे इन बद्ध जीवों को, आप लूज क्यों करो, टाइट करो ना, हरे कृष्णा। सदैव चिंतन करते रहते कि बद्ध जीवों को कैसे उद्धार किया जाए। तो ऐसे ही पद्म पुराण में कथा आती है कि शौनक मुनि संतों की सभा में बद्ध जीवों के कल्याण के लिए सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जीव के लिए गोलोक की प्राप्ति अति दुर्लभ है, तो ये जो गौलोक धाम की प्राप्ति है और वहाँ पर राधा कृष्ण भगवान की सेवा की प्राप्ति है, तो बंद कर दे इसको, क्या वो कैसे हो सकती है? तो सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो बताते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक आपके अंदर, हृदय के अंदर राधा रानी कृष्ण के विषय में उत्सुकता पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं होगी, तब तक ये कुछ ना कुछ होते रहेगा, तो कथा शुरू ही नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात का, ये सब ऊपर से कंट्रोल्ड है, हाँ, सेंट्रली कंट्रोल्ड। मैं तो कठपुतली हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत सारा सोच के आया होगा लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा जब तक सेंट्रल सैंक्शन नहीं होगा। तो सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा जी, सॉरी, नारद जी ने भी ब्रह्मा जी को ऐसे ही प्रश्न किया था एक बार कि ये जो अति दुर्लभ गौलोक प्राप्ति का विषय है वो कैसे सुलभ हो। ऐसे व्यास मुनि लिख रहे हैं कि उनके गुरुदेव ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, तो फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, इस असार दुस्तर दुर्धर भवसागर से पार उतर कर श्री राधा और कृष्ण की सेवा गौलोक में प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। इसलिए आज के संध्या में ये कथा बहुत समर्पक है, क्योंकि कल राधाष्टमी है, तो आपकी राधाष्टमी व्रत की भूमिका इससे अच्छी होगी तैयार, ये हमारी आशा है। तो फिर नारद मुनि बहुत खुश हो गए कि राधाष्टमी का व्रत करके गौलोक में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, दो चार प्रश्न किए, राधाष्टमी का व्रत कैसे करें? नंबर वन, राधाष्टमी व्रत न करने वालों का क्या होगा? राधाष्टमी का व्रत पहले किसने किया था, ये सब हमें बताइए, और राधा रानी के जन्म के विषय में भी बताइए। ऐसे चार प्रश्न किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनना, समाहित ध्यान देकर सुनना, ऐसे श्लोक का शब्द है समाहित। समाहित यानी हमारे ध्यान को एक जगह इकट्ठा करके सुनना, ध्यान को बांट के, जैसे पीछे बच्चों की आवाज आ रही है, कोई पीछे दिख रहा है कोई आगे दिख रहा है, इस प्रकार से नहीं सुनना, वो कह रहे ध्यान से सुनना। और आपने कहा है विस्तार में बताइए, लेकिन मैं विस्तार में नहीं कहूँगा, संक्षेप में कहूँगा, ये भी बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ब्रह्मा जी भी स्वयं सोचते हैं कि इस विषय में चर्चा करने के लिए मैं भी योग्य नहीं हूँ, इस विषय का मैं भी अधिकारी नहीं हूँ, आई एम नोबडी टू टेल दिस, इसलिए आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो कितनी सारी कंडीशंस हैं राधा रानी के विषय में समझने के लिए, बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं। इसलिए यहाँ वहाँ से ध्यान हटाकर एकाग्र करके सुनिए, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कहते हैं भगवान के अलावा इस राधा तत्व को और कोई जान नहीं सकता है। हो गया ना, उधर ही बात खत्म हो गई। और वो तो भगवान है नहीं, वो खुद जानते हैं मैं भगवान तो नहीं हूँ। वो कहते हैं भगवान कृष्ण के अलावा राधा रानी के तत्व को और कोई नहीं जान सकता है। और भगवान भी स्वयं कहते हैं कि मैं भी इस तत्व को नहीं जानता। आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड। वो भी खुद पजल्ड है, चैतन्य महापुरुष बन के आए क्यों वो, क्योंकि खुद पजल्ड है वो, व्हाट इज दिस राधा तत्व। फिर भी इसलिए मुझे, मुझमें इस राधा तत्व के वर्णन की सामर्थ्य नहीं है। वो कहते हैं कि 1000 एकादशी निर्जल व्रत किया जाए और उसको 100 बार गुणित किया जाए, उतना लाभ एक राधाष्टमी व्रत करने से होता है। और मैंने जन्माष्टमी की कथा में मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला था भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण से कि 21,000 करोड़ एकादशी करने का लाभ एक जन्माष्टमी व्रत करने से होता है। एक जन्माष्टमी व्रत इज इक्वल टू 21,000 करोड़ एकादशी व्रत। मैं नहीं कह रहा हूँ, भविष्य पुराण कह रहे हैं। सुमेरु पर्वत जो हिमालय से भी कई गुना ऊंचा है, वो सुमेरु पर्वत इतना भी स्वर्ण दान करेंगे ना, उससे भी ज़्यादा लाभ एक राधाष्टमी व्रत करने से होता है। 1000 कन्याओं का दान करने पर भी जितना लाभ नहीं होता है, उसको 100 बार गुणित करने से लाभ होता है, वो 1 बार राधाष्टमी व्रत करने से होता है। गंगा आदि सारी नदियों में आप स्नान करेंगे और उस लाभ को 100 बार गुणित करेंगे, फिर भी राधाष्टमी के एक व्रत का लाभ को आप तुलना नहीं कर सकते। राधाष्टमी की महिमा न जानते हुए भी जो राधाष्टमी का व्रत करता है, वो सब परिवार गौलोक में प्रवेश करता है। कितना काफी है ना, तुलना के और भी चाहिए। तो फिर इतना सब बताया, फिर आगे बताया कि ये व्रत कैसे करना है। राधा रानी का जन्म जो है ब्रह्म मुहूर्त में होता है, तो ब्रजवासी लोग जो है आज के दिन व्रत करते हैं। हमारे मंदिर में राधाष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त से 12 बजे तक व्रत करते हैं, वो नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ अंतर नहीं है। ऐसा कुछ मत करना, अरे अरे हमने तो ऐसा करना चाहिए जैसे वो लोग करते हैं, नॉट नेसेसरी। हमें अपने गुरुजी के आदेश के अनुसार अगर हम पालन करेंगे तो वो सब कुछ लाभ उसी में निहित हो जाते हैं। तो व्रत कैसे करना चाहिए, बेस्ट व्रत इज निर्जल व्रत। शास्त्र में जो व्रत का वर्णन है, योग्य व्रत को ही निर्जली व्रत कहा गया, देयर इज नथिंग एल्स देन निर्जल व्रत। लेकिन जिनको निर्जल व्रत करना बहुत कठिन है, उनको सजल व्रत करना चाहिए, यानी पानी पीकर या कोई जूस पीकर या रस पीकर या दूध पीकर, लिक्विड, चबाने का कुछ काम नहीं, केवल पीना है। अब ये भी जन्माष्टमी के स्टडी में मुझे पता चला कि व्रत में अगर हम कोई चबाने वाली वस्तु खाएंगे तो व्रत का लाभ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, सॉरी टू से। तो अगर निर्जल नहीं हो रहा है तो सजल, और सजल भी नहीं हो रहा है तो सफल, यानी फल के साथ, तो मिनिमम फल ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद भी किसी को बीमारी है, कोई वृद्ध है, कोई बालक है, कोई गर्भवती स्त्री है, कोई मरणासन्न रोग की अवस्था में है, तो फिर हमारा जो है ना साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू का लड्डू, ऐसे पूरी किताबें लिखी हुई है उसके ऊपर, पूरी किताबें लिखी हुई है क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, हमको क्या क्या छोड़ना चाहिए, क्या क्या खा सकते हैं, उसके बारे में पूरा भर भर के वर्णन लिखा हुआ है उस पर, आप उसमें आप कूद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सफल के आगे कोई शास्त्र में व्रत की व्याख्या नहीं की गई है। ओके, राधाष्टमी में अच्छा क्या है कि आधा दिन ही व्रत करना है, तो कोशिश करके, मनोनिग्रह करके, निश्चय करके हम दोपहर तक निर्जल व्रत तो रख ही सकते हैं। अगर आपको कोई डायबिटीज़ की बीमारी है, कोई कैंसर की बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो आपके प्रकृति के अनुसार आपको उस प्रकार का व्रत रखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सजल है कि निर्जल है कि सफल है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कब तक कर रहे हो, अभी कहाँ तक आ गए आप। नहीं नहीं मैंने तो अभी 10:30 बजे पानी पी लिया। कोई आएगा बोलेगा 11:30 को मैंने एक आधा केला खा लिया, अभी क्या करूँ। ये अपना रिपोर्ट लेते रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है व्रत का, व्रत का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, उपवास, ठाकुर जी के निकट रहना, विचार से, स्मृति से, सेवा से, कार्य से, उसमें लगे रहना। और ठाकुर जी की स्मृति बने रहने के लिए क्या आवश्यक है, सजल निर्जल की सफल, वो देखना उसके अनुसार। वो नियम आग्रह नहीं करना है। मैं तो ऐसे निर्जला के दिन बकायदा बोल लेता हूँ, जहाँ पर कथा कर रहा हूँ, एक ग्लास दूध का शक्कर डाल के रख देना उधर, बीच में कुछ लगा घंटी बज गई तो तुरंत पी लूँगा, आगे कथा करूँगा, क्योंकि कथा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसके वजह से कथा बंद हो गई तो फिर क्या फ़ायदा है उस व्रत का। कथा में सेवा रुकनी नहीं चाहिए, सॉरी व्रत में सेवा रुकनी नहीं चाहिए। वो सेवा नहीं रुकनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या आवश्यक है वो आपको करना चाहिए। डू द नीडफुल, उसमें दूध गर्म शक्कर डाल के पी लिया तो कोई व्रत नष्ट नहीं होता है। जब तक भगवान की स्मृति और सेवा निरंतर चल रही है, आपका व्रत अखंड है। तो ये वो व्रत की बात, एक नंबर वन। नंबर टू क्या करना चाहिए, जिसके घर में राधा कृष्ण के विग्रह है उनको पंचामृत से राधा कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। जिनके घर में नहीं है, जिनके घर में है या मंदिर में जहाँ हो रहा है वहाँ जाना चाहिए, उस अभिषेक को देखना चाहिए या उसको करने में सहायता करनी चाहिए या उसको करना चाहिए। दोन तीसरा, भगवान का सुंदर सुंदर पुष्पों से, अलंकारों से और वस्त्रों से श्रृंगार करना चाहिए, आरती पूजन करना चाहिए, अर्च विग्रह पूजा करनी चाहिए उस दिन। कितने हो गए आइटम, तीन हो गए। चौथा, भगवान को या राधा रानी को जो जो अच्छे अच्छे पसंदीदा व्यंजन है वो प्रेम से बनाकर उनको अर्पण करने चाहिए। कितने हो गए, चार। पांचवा आइटम है, भगवान की जिनका जन्मदिन है, राधा रानी है, कृष्ण है, नरसिंह भगवान है, जो भी है, बलराम जी है, उनकी कथा का कथन या श्रवण करना चाहिए उस दिन में। है आप सेवा कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, कान में उधर स्पीकर से आवाज आ रहा है, वो कथा भी सुन रहे हैं, करना चाहिए। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, छठवा है ना ये, लास्ट वाला है, उस दिन भगवान नाम के हरि नाम कीर्तन में आपको भाग लेना है और नृत्य करने को नहीं भूलना है। यू हैव टू डांस इन हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एंड सिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इस प्रकार से वर्णन किया है कि राधाष्टमी के व्रत का पालन करना चाहिए। तो मैंने सोचा अरे तो सबको हमारे मंदिर में होता है ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर महिमा जान के आप करेंगे तो आप भी ज्यादा भाग लेंगे और ज्यादा हृदय से करेंगे, ज्यादा लाभ होगा आपको। व्हाई नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉलेज मेक्स यू गो डीपर इन द सब्जेक्ट। जानकारी आपको उस विषय में और गहराई में प्रवेश करने को मदद करती है। तो यह हुआ एक प्रश्न का उत्तर कि व्रत कैसे करें। और इसके पहले किसने व्रत किया था, तो पद्म पुराण में सूत जी, सूत गोस्वामी जी अभी एक कथा सुनाना आरंभ करते हैं। वो कहते हैं कि एक लीलावती नाम की बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत युवा अवस्था में थी। कहते हैं सुमध्या हरिणी अंगा थी वो, यानी उसके शरीर के हर अंग जो है वो बहुत सुंदर थे। चारु कर्ण उसके बहुत सुंदर आकर्षक नेत्र कर्ण थे, सुकेशी बहुत सुंदर रेशमी बाल थे, और हर अंग से वो सुंदर थी। लेकिन हुआ ये कि सत्संग ना होने के कारण वो सुंदरता ही उसके माया के अंदर पतन होने का कारण बनी। बहुत बार होता है, सुंदर शरीर भी बहुत बड़ी मुसीबत होती है बहुत लोगों के लिए, उनका सुंदर शरीर पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए एक समस्या का कारण बनता है। जो कोई सुंदर नहीं होता है वो एक तरह से खुश होता है, उनको दूसरों से कोई संकट की क्या जान ये मुमकिन मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति सुंदर होता है उसको बहुत संकट होता है। उसी तरह से सत्संग न होने की वजह से सुंदरता का अभिमान हो गया, अभिमान की वजह से माया में पड़ गई और उसने सारे प्रकार के पाप करना शुरू किया। और लिखा है कि एक प्रकार से वेश्या का जीवन वो जी रही थी, वेश्या व्यवसाय नहीं कर रही थी लेकिन वैसे ही जी रही थी शरीर का दुरुपयोग करते हुए। एक दिन नगर से गुजर रही थी तो उसको ना कैसा होता है ना कि जो विषय भोग में अतिरेक करता है ना कोई व्यक्ति, लगातार विषय 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 भोग 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 लेता है ना, तो उसकी ये स्थिति निश्चित आती है स्वभाव के अनुसार, विषय के भोग के स्वभाव के अनुसार उसको विफलता आ जाती है बीच में। जैसे आपको जलेबी बहुत पसंद है, अब खा खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, एक समय आएगा आपको उल्टी आने लगेगी उसी जलेबी से जो आपको इतनी पसंद है, और कुछ देर बाद उसी से आपको दस्त भी होने लगेंगे, उसी से आपको पेट भी खराब हो जाएगा। वो विषय का विषय भोग की एक स्वभाव है, वो आप ज़्यादा करेंगे तो वो उसका आनंद खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप तड़पते रहोगे। लेकिन नहीं मिलकर तड़पना अच्छा बताया गया है, और मिलकर ज़्यादा ग्रहण करके जो होता है वो बहुत बुरा बताया गया है। इंद्रिय भोग के बाद में जो होता है ना वो बहुत खराब होता है। इंद्रिय भोग ना मिलने पर थोड़ा तड़पेंगे लेकिन नो प्रॉब्लम। तो एक दिन उसको ना इतना भोग ले लेके वो पछता गई, वो परेशान हो गई, दुखी हो गई, विफलताग्रस्त हो गई। नगर के बाहर आई तो एक मंदिर दिखाई पड़ा, जैसे मुझे यहाँ से गुजर रही तो उनको एक मंदिर दिखाई पड़ा, तो वैसे कुतूहलवश प्रवेश किया उसने। और उस दिन राधा अष्टमी थी, और उस दिन उस मंदिर में सारे जो विरक्त भक्त बाकी संत भक्त गृहस्थ भक्त सब मिलकर राधा रानी की सेवा कर रहे थे। क्या क्या कर रहे थे? वो अभिषेक कर रहे थे भगवान का, पंचामृत से श्रृंगार कर रहे थे, उनको भोग अर्पण कर रहे थे, वाद्य बजा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, गायन कर रहे थे, स्तोत्र गायन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, हर प्रकार की सेवा कर रहे थे। तो वो पूछते ये सब क्या है, तो वो कहते हैं आज भादो शुक्ल अष्टमी का राधाष्टमी का दिन है, राधाष्टमी का उत्सव मना रहे हम लोग। अच्छा, तो वो उनका वर्णन ऐसा किया गया है साधुओं का पद्म पुराण में कि वो वैष्णव व्रत तत्पर थे, यानी अपने राधाष्टमी के व्रत पालन में बड़े तत्परता से पालन कर रहे थे। तो वैष्णव व्रत तत्पर ऐसा उनका वर्णन किया गया है। तो श्रद्धा पूर्वक वो बता रहे हैं अभी, वो व्रत तत्पर वैष्णव जो है इस लीलावती को बता रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना इसका, श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी का व्रत करने से क्या क्या होता है? स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, परस्त्री हरण, विश्वासघात, चोरी, गुरुस्त्री गमन, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं और गौलोक धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। अब इसमें एक लिखा है स्त्री हत्या, परस्त्री हरण। कहते हैं स्कंद पुराण में कि 100 ब्रह्म हत्या के बराबर एक स्त्री हत्या है। एक किसी भी स्त्री, पापी हो या पुण्यवती हो या भक्त हो अभक्त हो, किसी भी स्त्री का हत्या या हरण करने से, जैसे रावण ने किया था, 100 ब्रह्म हत्या करने का पाप लगता है। तो दोबारा एक बार पढ़ता हूँ, राधाष्टमी का व्रत करने से श्रद्धापूर्वक क्या क्या नष्ट होता है? स्त्री हत्या का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, गो हत्या का पाप, परस्त्री हरण का पाप, विश्वासघात, चोरी, गुरुस्त्री गमन। पुराने जमाने में गुरुजी गृहस्थ हुआ करते थे तो गुरु की पत्नी का भी कुछ लोग भोग लेते थे। हमारे चंद्र देवता ने अपने गुरु बृहस्पति के पत्नी का भोग लिया था, इसलिए वो घटते बढ़ते क्यों हैं, तो गुरु पत्नी का भोग किया था। और एक बड़ा जघन्य पाप है विश्वासघात। विश्वासघात क्या है? कि किसी के आप पर श्रद्धा है और उसके विपरीत आप कार्य कर रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं कि ट्रस्ट निर्माण करना ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और ट्रस्ट निर्माण, विश्वास निर्माण कैसे होता है? विश्वास करने के अनुकूल जब व्यवहार करते हैं तो ही ये विश्वास निर्माण हो सकता है। और ये विश्वास जो है, ये श्रद्धा जो है, ये ट्रस्ट जो है, ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हम सब यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि हमें हमारे गुरुजी पर श्रद्धा है। हम सब यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के जो भक्त हैं उन पर हमको श्रद्धा है। हम यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर बताए गए सिद्धांतों पर हमें श्रद्धा है, यहाँ पर बताए गए नियमों पर हमको श्रद्धा है, यहाँ पर जो शास्त्र सुनते हैं उन पर हम पर श्रद्धा है। इसके आधार पर हम चल रहे हैं, और ये श्रद्धा विश्वास अगर टूट जाएगा तो हम भी टूट जाएंगे। तो ऐसे किसी की श्रद्धा को हमारे व्यवहार से तोड़ना, इसको विश्वासघात कहते हैं। और ये विश्वासघात जैसे 4 पाप हैं उसके जैसा ही पाप है। एकंदरित 7 प्रकार के पाप होते हैं वेदों के अनुसार। वो 4 जो हम नियम पालन करते हैं ना, मांसाहार, व्यभिचार, नशा, जुआ, उसके बाद है किसी का वध करना, किसी के घर में आग लगाना, और एक है विश्वासघात। उसके अंदर ये सारे प्रकार के पाप जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब सुन रही थी लीलावती, तो उसको ना अपने सभी पापों का स्मरण हुआ। जब हम पाप करते हैं ना तभी उसका कुछ स्मरण नहीं पड़ता हमको, करते जाते हैं बस। जैसे गटर में आदमी गिरा है ना, तो उसके अंदर सब काला सब कीचड़ लगा हुआ है, लेकिन जब तक अटक के अंदर नशा में पड़ा हुआ है कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको। जब नशा उतरती ना उसकी तो इधर ये क्या है सभी गंदा, और बाहर आ जाता है, और बाहर आके फिर घर जाके स्नान करता है और सफ़ेद कपड़े पहनता है, और फिर जाके गैलरी से उसी गटर को देखता है जहाँ पर वो पड़ा था, तो उसको लगता है बाप रे कितनी गंदगी में था मैं, कितनी बदबू में था, कितने दुर्गंध में था, कितने रोगग्रस्त कीचड़ में था मैं। तो वो जो अंदर की स्थिति की जो गंभीरता है उसको कब पता चलता है, जब उसके बाहर निकलेगा तब पता चलता है, उसके अंदर जब तक है ना तो पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से ये जब पश्चाताप करके उस पापों से बाहर आकर मंदिर में आकर सुना, तब उसको अपने पूरे जो कार्य थे वो समझ में आया, ये सब पाप की गिनती में आते हैं, और वो पापों का स्मरण भी हुआ और अपने विषय में बहुत घृणा लगी उसको कि मैं कितनी पापी हूँ, और उसको पश्चाताप हुआ। ये पश्चाताप है ना बहुत ज़रूरी है। पाप करके पतन होना इतना आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन पाप करके पतन होने के बाद दोबारा पाप नहीं करना और पश्चाताप होना यह महत्वपूर्ण है। मनुष्यता कहाँ प्रकट होती है? मनुष्यता का स्वभाव यही है पतन होना, हम सब लोग पतनशील है, वी ऑल फैलिबल, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि पतन होने के बाद में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमारी मनुष्यता की परीक्षा होती है। तो जब मनुष्य है तो वो पश्चाताप करेगा नंबर वन, और नंबर टू दोबारा वो गलती नहीं करेगा जो जिसका पश्चाताप कर रहा है। तो इसको गलतियों का अनुभूति भी हुई, स्मरण भी हुआ, पश्चाताप भी हुआ, और वो सुबह से वैसे ही कुछ खाए पिए बिना ही मंदिर आई थी तो वैसे ही पेट खाली था, तो उनके संतों के संग से उसने राधाष्टमी का व्रत किया, निर्जला व्रत किया, अभिषेक में सहायता की, भोग में सहायता की, श्रृंगार में सहायता की, गायन वादन नृत्य में भी सहयोग किया, और वो व्रत समाप्त हुआ, फिर प्रसाद हुआ और वो व्रत करके निकली जाने के लिए। तो उसी दिन उसी समय उसी रास्ते में एक काले विषैले सांप से उसका दंश हुआ और वो वहीं के वहीं मर गई। देखो कैसी भगवान की योजना है। तो वहीं के वहीं मर गई, तो तुरंत वहां से यमदूत आ गए और अपने भयंकर पाश में उसकी आत्मा को बांधा और शरीर से घसीटा और उसको घसीट कर ले जा रहे थे पापों का दंड देने के लिए। लेकिन उतने से वहाँ से एक सुंदर रथ आया, बहुत चमचमाता हुआ, हजारों सूर्यों के प्रकाश जैसा चमचमाता हुआ रथ में बैठकर चार विष्णु के दूत आए। उनके हाथ में, उनका शरीर बहुत प्रकाशित था, उद्भासित था, हाथ में शंख चक्र पद्म गदा थे, उन्होंने अपने हाथों के चक्र से वो सारे पाश काट दिए जिससे वो यमदूत उनको खींच रहे थे, सारे पाश काट दिए, वो आत्मा को उन्होंने यमपाश से मुक्त किया और तुरंत रथ में बिठाया और पंखा करते हुए गीतगान करते हुए भगवान का गुणगान करते हुए उसको सीधे दिव्य स्वर्णमय विमान में बैठकर वो गोलोक वृंदावन ले गए, और वहीं तुरंत उस कलीलावती नाम की आत्मा को राधा रानी और कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त हो गई। ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, ये कथा सूत जी ने सोनक जी को सुनाई और उनके बहाने बाकी सभी लोगों को सुनाई। कितने संत थे वहाँ पर, कितने लोग थे वहाँ पर स्वामी शरण में? 88,000। इतने सारे संतों को भी इस कथा का लाभ हुआ। तो ये भी एक शॉर्टकट है, जैसे पहले बताया ना शॉर्टकट आपको वैष्णव सेवा वाला, ये भी एक शॉर्टकट है। उन्होंने प्रश्न ही किया था कि जीव के लिए अति दुर्लभ है वो सुलभ कैसे हो, तो उसके उत्तर में ये सब निकला है। तो ऐसे है हमारी राधा रानी और इनके व्रत का लाभ। तो आप, मुझे ऐसी आशा है कि आप सब लोग इसी प्रकार से व्रत करेंगे और पूरे हृदय से व्रत करेंगे, कोई कष्ट से पीड़ा से, क्योंकि कष्ट से पीड़ा से किया हुआ व्रत उनको भी अच्छा लगता नहीं जिनके लिए आप कर रहे हो। किसी की सेवा कर रहे हो और आपको परेशानी हो रही है, आप तड़प रहे हो, तो बोले मत करो, आप बोले आप खुद बोलेंगे मत करो मत करो, ठीक है जो है मैं संभाल लूँगा अपने आप, है ना? आप कैसे करोगे कि नहीं करोगे? और आपकी सेवा करने वाला व्यक्ति बहुत उत्सुकता से प्रेम से हृदय लगाकर सेवा कर रहा है तो आप उसको कहेंगे नहीं मत करो मत करो, आप उसको बोले अच्छा लग रहा है तो हमको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी करते रहो। तो जिनके लिए व्रत कर रहे हैं वो व्रत करते समय हमको ऐसा कष्ट पीड़ा परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर हम व्रत क्यों करते हैं, हम व्रत करते हैं जिनके लिए व्रत कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भोग का त्याग कर रहे हैं और उनकी सेवा में अपना हृदयपूर्वक सहभाग दे रहे हैं। वो उसका एकमात्र उद्देश्य क्यों होता है, सेवा का उद्देश्य भी वैष्णव सेवा का उद्देश्य क्यों होता है, उस वैष्णव की जो सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न करे, ये उसका एम है। हम सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्नता नहीं हो रही है तो हमारी सेवा में गलती है, हमको सेवा को सुधारना चाहिए और उस प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। सेवा की परिणति सेव्य की प्रसन्नता में है। तो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हृदय से आप व्रत करो। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप फल खा के व्रत करो, आप खिचड़ी खा के व्रत करो, लड्डू खा के व्रत करो, लेकिन उनकी याद करो और हृदय से उनका स्मरण करते हुए व्रत करो और बाकी सर्व कर्म में अपना दिल लगाओ। भोग बना दो, अभिषेक में हाथ लगा दो, साफ सफाई करो, बर्तन मांजो, जो भी सहायता में मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, उसको पैकिंग करो, सेटिंग करो, जो भी उसके लिए आवश्यक है डू द नीडफुल, लेकिन हृदय से समर्पित भाव से करो तो ये शॉर्टकट आपको पूरी तरह से लाभदायक होगा। वो शॉर्टकट के अंदर भी हमें अगर रुचि नहीं है तो और कौन सा शॉर्टकट भगवान बनाए बताओ, है ना। हरि नाम हमको दिया है, तप करने को जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ के जंगल जाने की जरूरत नहीं है, धन धन को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रिय भोग को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो भी खा पी रहे उसको त्याग करने की जरूरत नहीं है, अच्छे कपड़े त्याग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करते हुए केवल भगवान नाम में हृदय को अर्पण करना है, भगवान नाम की प्रक्रिया को अपनाना है। इससे अधिक बालक भी ले सकता है, बुढ़ा भी ले सकता है, औरत भी ले सकती है, मरणासन्न व्यक्ति भी ले सकता है, जन्म हुआ व्यक्ति ले सकता है, रोगी ले सकता है, धनी ले सकता है, विद्या विभूषित ले सकता है, अनपढ़ भी ले सकता है, हर प्रकार के हर अवस्था का व्यक्ति इस नाम का उच्चारण करके अपना जीवन धन्य कर सकता है। इससे अधिक भगवान और क्या डिस्काउंट दे हमको, लेकिन फिर भी डिस्काउंट आ ही रहे हैं, एक के बाद एक बार आते रहते हैं। वो सबसे आसान तरीका जो है उसमें भी रुचि उत्पन्न के लिए ये लो वैष्णवों की सेवा करो, मैं एक चैनल बना देता हूँ, आप वैष्णव सेवा करो, यहाँ से आपको रुचि दे दूंगा मैं। ये कौन किसने तय किया है, उन्होंने तय किया है, इसलिए वैष्णव सेवा में आपको रुचि प्राप्त हो रही है, नहीं तो बर्तन मांझते रहो कुछ प्राप्ति नहीं होगा, वैष्णवों के कपड़े धोते रहो, बर्तन मांझते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे करोगे तो ये मैं दूंगा, ये उन्होंने तय किया है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये शॉर्टकट उन्होंने बनाया है कि इनकी सेवा करो या मैं यहाँ से रुचि दे दूंगा आपको। फिर अभी बता रहे हैं पद्म पुराण में, राधाष्टमी का व्रत करो, एक व्रत महिमा न जानते हुए करने से भी, एक ही व्रत एक जीवन में, गौलोक धाम में, गौलोक धाम में कौमा राधा कृष्ण की नित्य सेवा टू, नंबर वन नंबर टू, ये दोनों प्राप्त हो सकता है। तो हम कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है क्या, इतना हम लोग इतना साल से कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बात पद्म पुराण में व्यास देव जी द्वारा संकलित है कही गई हुई है हमारे कल्याण के लिए, तो श्रद्धा रख के करते हैं तो व्यासदेव जी का ये उत्तरदायित्व है कि हमारी श्रद्धा को फल देना। अगर व्यास देव जी कुछ बोल रहे हैं और उन पर श्रद्धा रख के हम कुछ कर रहे हैं तो उसका फल देना उनका उत्तरदायित्व है, और वे बड़े महान जीव हैं, वो महान महान जीव हैं, वो साधारण जीव नहीं है, वो ऐसे ही कुछ बात नहीं करते हैं बिना मतलब की और बिना सब्सटेंस की। तो ऐसे ये सर्वतोपरि प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी का कल जन्मदिन है, भाद्रपद शुक्लाष्टमी का दिन, हाँ तो किसी शास्त्र के अनुसार उनका जन्म मध्यान्ह में हुआ था, लेकिन ब्रजवासियों के शास्त्र के अनुसार उनका जन्म भोर के समय ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। तो उसकी सारी कथा हम कल करेंगे सुबह शाम। तो सारांश में इतना समझना जरूरी है कि ये सब कथा सुनने में कहने में हम किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हैं, फिर भी संत जनों की वैष्णव जनों की असीम कृपा से हमें ये सब भाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम इनके विषय में परिचित भी हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन राधा रानी के विषय में उनको जानकारी भी नहीं है। बरसाना और राधा ये शब्द और ये स्थान उनको पता ही नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि केवल कृष्ण का पूजन करना ये कृष्ण भक्ति का ही अपमान है। केवल कोई संप्रदाय में ऐसे होता है, नाम नहीं लूंगा मैं, केवल कृष्ण की मूर्ति होती है उनकी खाली सेवा करते, केवल विष्णु की मूर्ति होती है उसमें कोई सही सेवा करते, ना लक्ष्मी है वहां पर ना राधा रानी है, लेकिन राधा के बिना कितने भी समर्पण भावना से अगर कृष्ण की सेवा करेंगे तो सब व्यर्थ हो जाते, कहते कि वॉइड है, वॉइड यानी एम्प्टी है, खाली है पूरा वो, बौखला है, मतलब क्या ट्री को क्या बोलते हैं, अंदर से खोखला है, खोखला, अंदर कुछ नहीं, खाली ढांचा है बस, नो सब्सटेंस इनसाइड, खाली पात्र है वो। तो हमारा भाग्य क्या है कि ऐसे रहस्यमय शक्ति जो है भगवान की, उसके विषय में हमको हमारे आचार्य की वजह से जानकारी हुई है। क्योंकि वो जो रसिक भक्त हैं, रसिक शिरोमणि जो हैं, वो सब हमारे आचार्य के रूप में जन्म लिए हुए हैं, हमारे संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, उनका हमारा दीक्षा के माध्यम से संपर्क हुआ है, इसलिए उनकी कृपा हम तक भी पहुंचती है। वो इसके विषय से, इसलिए इसके कारण हमें वो विषय के विषय में हमारे परिचय हो रहा है वो विषय के प्रति, और परिचय होता तो क्या होता, जानकारी बढ़ती है ना। अभी आपका हमारा परिचय हो गया, फिर हम जानते हैं कि आप किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, कितने पढ़े लिखे हो, क्या उम्र है आपकी, क्या आपको तकलीफ है, क्या नहीं है, सब कुछ पता चलता है। परिचय ये शुरुआत है विषय के बारे में जानकारी करने की, तो परिचय होना भी पर्याप्त है, क्योंकि परिचय हमें आगे बढ़ाएगा और भगवान के विषय में पूरी जानकारी कराएगा, भगवान के विषय में प्रेम बढ़ाएगा, आसक्ति बढ़ाएगा। ऐसा ही विषय है ये, राधाष्टमी, गोकुलाष्टमी, बलराम जयंती, नरसिम्हा जयंती, ये माधव तिथि क्यों बताया गया है, क्योंकि इन तिथियों का पालन करने से माधव के प्रति प्रीति बढ़ जाती है। क्या वो क्या है, वो ठाकुर भक्तिवेद का वाक्य क्या है, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे, जतने का मतलब क्या है, प्रयत्न पूर्वक पालन करूंगा मैं, और ये सारी माधव तिथि के वर्गीकरण में आता है, ऑल दिस आर कॉल्ड माधव तिथिज, और इनका व्रत पालन करना प्रयत्न पूर्वक, ये हमारे जीवन का आनंद का स्रोत होना चाहिए, आनंद का विषय होना चाहिए। टू फॉलो द व्रत ऑफ दिस माधव तिथि शुड बी द सोर्स ऑफ आवर प्लेजर, देन आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न वगैरह लेना है क्या, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हरे कृष्णा, नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, है तो पूछो, माइक में पूछो, माइक में।
हरे कृष्णा, अपन राधाष्टकम म्हणून करू शकतो ना प्रभूजी सेवा,
बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या क्या बताया था, वो संत लोग जो भी लीलावती मंदिर में गई, अभिषेक ऐका ना अभिषेक, श्रृंगार, भोग, वाद्य, नृत्य, गायन, स्तोत्र गायन, स्तोत्र में आ गया ना राधाष्टमी, राधिकाष्टम आ गया, राधिकास्तव आ गया, राधे जय जय माधव दोहिते वो भी आ गया, कंचनाब कुंकुमाब्ज काम वो भी आ गया, राधिका स्तव आ गया, राधिकाष्टम आ गया, राधिका सूत्र आ गया, राधा कृपा कटाक्ष आ गया, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम वो भी आ गया, वो सब करना चाहिए। और कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू वेरी मच। राधा रानी की।